بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق اجمعين. قاسم الجبارين وقاطع دابر المعتدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لا سيما بقية الله في الأرضين. إمام زمان الموبي.
الله صلى الله عليه
وعلى آله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضالا، بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسيرا بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بارے دیگر معطل کرے اپنی زبانوں کو.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آج سال کا آغاز بھی تھا. اسلام سے پہلے قمری مہینے تھے، ہجری 88 مہینے تھے، عیسوی مہینے بھی تھے. سال عیسوی تھا، سال شمسی تھا اور سال قمری تھا. اسلام نے سال قمری کو اور اس کیلنڈر کو اپنایا اور اس کے مطابق اپنے احکام اور فرائض کا بیان کیا. محرم جاہلیت کے زمانے میں بھی ایک ایسا مہینہ تھا جس میں وہ عرب بدو جو چھوٹی چھوٹی چیز پر سال سال کی خون ریز جنگیں لڑتے تھے، وہ اس مہینے میں لڑائی نہ کرتے تھے. اس مہینے میں ان کے ہاں بھی مخالف کی جان مال اور ناموس محفوظ ہوتی تھی. اسلام نے بھی ماہ محرم کو ان مہینوں میں سے قرار دیا ہے جن میں جنگ حرام ہے، جائز نہیں. یعنی جہلیت کے زمانے میں جو ضابطہ تھا عربوں کے ہاں، اس کو قبول کیا، اس کو سائن کیا اور اسی سلسلے کو جاری رکھا کہ اس مہینے میں جنگ و جدال نہیں ہوگا، انسانوں کی جان مال اور ناموس کی حفاظت ہوگی. حتیٰ آداب بیان کیے گئے جس طرح سے باقی مہینوں کے آداب ہیں، ماہ رمضان کے آداب ہیں، ماہ شعبان کے آداب ہیں، ماہ رجب کے آداب ہیں، ماہ رمضان کے بھی آداب بیان کیے گئے، ماہ محرم کے بھی آداب بیان کیے گئے. کہ جب ماہ محرم شروع ہو, اول ماہ محرم کو اللہ کے نبی دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور مخصوص دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے. لیکن تاریخ اسلام کا یہ المیہ ہے کہ جو مہینہ عرب جہلیت کے زمانے میں بھی جنگوں کے حوالے سے جنگوں کو حرام قرار دیتا تھا, اور اسلام نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا. رسول اسلام کی اولاد پر سب سے زیادہ اور بڑی مصیبتیں اسی مہینے میں. ہمارے آٹھویں امام جب امام کا نام ہو تو پھر ضرور پڑے, اگر آٹھواں ساتواں ہو تو پھر ضرورت نہیں ہوتی, ضرور پڑے محمد والے. تو ہمارے آٹھویں امام ارشاد فرماتے ہیں محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہماری بے حرمتی کی گئی, ہمارے مردوں کو مارا گیا, ہمارے جوانوں کو قتل کیا گیا, ہماری خواتین پہ ظلم کیا گیا, ان کے خیموں کو لوٹا گیا, انہیں قیدی بنایا گیا. یہ وہ مہینہ ہے جس نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا اور ہمیں وہ غم دیا جو تابد رہے گا, نہ ختم ہونے والا. اور مومنین سے کہا کہ اس مہینے میں اشک بہائیں حسین کے غم میں, یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ. ایک ایسا مہینہ ہے ماہ محرم جس میں یزیدی فتنے کو کربلا کی زمین میں حسین اور حسینیوں نے دفن کر کے رکھ دیا. حسین وارث انبیاء ہے, حسین وارث اولیاء اور اوصیاء ہے. حسین فقط نواس رسول نہیں, حسین فقط جگر گوشہ بطول نہیں, حسین فقط نور چشم علی مرتضی نہیں, بلکہ خود امام ہے. امام ایک عظیم قربانی دی ہے حسین نے اور فتح اور شکست کے معیار بدل ڈالے حسین. کربلا ہمارے لیے ایک عظیم میراث کی حیثیت رکھتی ہے, یہ سرمایہ زندگی ہے, سرمایہ حیات ہے, سرمایہ نجات ہے, سرمایہ عزت و کرامت و شرف و آزادی ہے. کربلا کی یاد منانا یعنی ظلم کے مقابلے میں مقاومت اور استقامت کی یاد منانا, وفا اور وفاداری کی یاد منانا, ایثار و فداکاری کی یاد منانا, اللہ کی بارگاہ میں ایسے سجدے کی یاد منانا جس نے سجدوں کو بغیر حیات دی, ایثار قربانی فداکاری وفاداری عزت مقاومت استقامت کی یاد ہے. کربلا ایک عظیم سرمایہ ہے اس لیے کہ کربلا کا خالق کون ہے؟ حسین. ایک امام ہے, ایک ہادی ہے, ایک پیشوا ہے, بشریت کو نجات دینے والا ہے. کربلا کے شہکار کا خالق حسین. اس طرح سے کربلا کی تخلیق کی ہے حسین نے کہ قیامت تک تمام شریفوں کو اپنی طرف جذب کیے ہوئے رہتا ہے, تمام باضمیروں کے دل اپنی طرف متوجہ کیے رہتی ہے. یہ کعبہ بن گیا ہے شریفوں کے دلوں کا, غیرت مندوں کے دلوں کا, काबा है करबला, एक इमाम की तख्लीक है। इसकी एक एक ईंट हुसैन ने अपने हाथों से रखी है। करबला की इमारत एक एक चीज कबानी खुद हुसैन है, इमाम है, हादी है, पेशवा है, मुंजी बशरियत है। वो जानता है, जानता है कि मेरा हर कौल फेल अमल सुकून हरकत बोलना खामोश रहना क्यामत तक के लिए हुज्जत है, हुज्जत। और इसके अंदर बशरियत की हिदायत का सामना है। एक अजीम वादी में कदम रखना है, माए मुहर्रम में वारद आना। आइमा ने सलाम तैयारी करते थे माए मुहर्रम में वारद होने की। आदाब है, आदाब। इंसान आजादार नजर आए, इंसान मातमी नजर आए, इंसान गमगीन नजर आए, इंसान मुसीबत ज़दा नजर आए। हम तो शहादत के बाद गिरिया करते हैं ना। अल्लाह के नबी जब हुसैन इस दुनिया में आए ना, सबसे पहले जब अपने हाथों पे लिया तो हुसैन पे गिरिया किया। आजादारी का बानी है मेरा नबी, खुद बानी है। हमारे यहां मुतअद्दद सही रवायात हैं, मक्तल की मोतबर कुतुब में है कि इमाम हुसैन पे बहुत क्रिया किया अल्लाह के नबी ने। कभी उम्मुल आयशा के घर में हुसैन को आगोश में लेते क्रिया करते, अपनी अजवाज के मुख्तलिफ घरों में, कभी जनाब सईद और अली के घर में हुसैन को उठाते क्रिया करते। और बात अजीब कैफियत हो गई, अगर इमाम हुसैन ने नया लिबास पहना होता देख के लिया मोतबर रवाया और मोतबर उलमा के करे वहां पर आकर वापस। ये क्या है? हुसैन अलैहि सलातो वसलाम को खेलते हुए देखते, दौड़ते हुए देखते, जरा भी तकलीफ इमाम हुसैन की बर्दाश्त नहीं करते। मरहूम शेख जाफर चिश्ती याद करते हैं, बाज़ औक़ात अली से कहते अली हुसैन को संभालो, पकड़ो पकड़ो। अली हुसैन मासूम है, बच्चे है ना, अली ने बिठाया हुआ है तो हुसैन की पेशानी पे बोसा देते, सीने पे बोसा देते, लबों में बोसा देते, बाजुओं को चूमते, शामों को चूमते, इस गले में बोसा देते, यहां पर बोसा देते, सीने पे दिल से ऊपर बोसा देते और साथ क्रिया करते। और हुसैन पूछते, मासूम बच्चे हैं, नाना रोते क्यों मुझे चूमते हुए? कहते कब्बिरो मवाज़िया सीधो और मेहमान, मैं वहां बोसे दे रहा हूं जहां तलवारों ने, जहां नेजों ने, जहां तीरों ने। स्पेशली ने जख्मी हो गया, सीने ने, गले ने, पूरे बदन में जख्मी हो गए, लबों पे बोसा देते, फिर लब हटा के हुसैन के दांतों पर बोसा देते। हर बोसे का सबक बयान किया अल्लाह के नबी ने। वहां बोसे दे रहा हूं जहां पत्थर लगेंगे, नेजे लगेंगे, तीर लगेंगे, तलवारें लगेंगी, लेकिन ये कभी नहीं बयान किया था कि दांतों पे क्यों बोसे। ये राज कब खुला? जब यजीद के सामने तश्त नसर थे, उसके हाथ में छड़ी थी, कभी हुसैन के चेहरे पे मारता था, कभी हुसैन के दांतों पे। तो जब दांत टूटने लगते तो मेरी आकादी, मेरी शहजादी सालिया जहरा बंदे में हाथों से सर पे मातम करके कहती, लैतनी कुंतु अमियाउ तो कबला हाजा, हुसैन काश ज़ैनब मर गई होती, काश मेरी आंखों की बीना ही चली जाती। سنتِ رسول ہے ادا کیا ہمارے آئمہ اتنا اہتمام کرتے تھے اداداری کا، ہر امام اپنے گھر مجلس سے اذان پا کرتے، اگر بھی پڑھنے والا نہیں ملتا خود مجلس سے اذان پا کرتے، خود مصائب اور مجلس پڑھتے، حتیٰ بعض آئمہ کے بارے میں چوتھے امام کے بارے میں ملتے ہیں، امام کے گھر میں جب خواتین اور بچے مجلس سے اذان کرتے ہیں نا تو امام اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے تبرک کیا کرتے ہیں، میرا چوتھا امام اس مجلس اذان میں شریک لوگوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے تبرک کیا کرتے ہیں۔ عزاداری سنت رسول ہے، عزاداری کی بنیادیں قرآن میں ہیں، كُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا مصداق عزاداری ہے۔ میں نے آج وہاں بھی ایک مناسبت سے عرض کیا کہ محبت اور مودت میں فرق ہوتا ہے، محبت وہ ہوگی جو دل میں ہو، دل میں، اور مودت اسے کہتی ہے، وہ محبت ہے جس کا اظہار کیا جائے، جس کا اعلان کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے محبت نہیں مانگی جو دنوں میں مخفی رہے، اجر رسالت مودت اہل بیت کو قرار دیا ہے، یعنی ایسی محبت جس کا اظہار کیا جائے، اہل بیت کے غم میں غمگین ہونا اور اس کا اظہار کرنا یہ مودت اہل بیت ہے، عزاداری مودت اہل بیت ہے، غمگین ہونا مودت اہل بیت، گھر کو سیاہ پوش کرنا مودت اہل بیت، اگر اپنی گاڑی ہے اس کے اوپر لبیک یا حسین لکھنا سیاہ رنگ میں، یہ بھی مودت اہل بیت ہے، گھر کے ماحول کو غمگین بنانا اور غمگین رہنا مودت اہل بیت ہے۔ کیا جس سے محبت ہوتی ہے اس کا غم اپنا غم نہیں ہوتا؟ ماہ محرم تو وہ مہینہ ہے نا جس کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتا ہے کہ میں نے روز عاشور اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، آنکھیں سرخ ہو گئے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گریبان چاک ہیں، آستینیں الٹی ہوئی ہیں، اور ہاتھ میں ایک ظرف ہے جس میں خون ہے خون۔ میں نے تڑپ کے پوچھا، اللہ کے نبی یہ آپ کا حال کیسا؟ کہا کر بنا میں تھا وہاں سے آیا ہوں، یہ خون کیسا؟ یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں نے جمع کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا، یہ مقدس خون ہے جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے۔ یہ اہل سنت کی معتبر کتب میں موجود ہے روایت، غم حسین سنت رسول ہے، غم حسین رضاداری مودت آل محمد کا مصداق ہے، لہذا نہ قرآن سے دور ہے عزاداری نہ سنت رسول سے دور ہے عزاداری۔ پھر ہمارے آئمہ نے تشویق کی ہے ہمیں عزاداری پر بات کرنا، بنو امیہ کا دور تھا، بنو عباس کا دور تھا، چار مومنین اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے، ضرور پڑے محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم، چار مومنین اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے تھے، پر ہمارے امام کیا فرماتے ہیں، عزاداری کو ایک تحریک کی شکل دینا، ایک مومنٹ کی شکل دینا ظلم کے اور ظالموں کے، جس تحریک کو نا جس مومنٹ کو آنسو مل جائے نا اس کو دنیا کا کوئی یزید شکست نہیں دے سکتا، تحریک کے اندر عقلانیت ہونی چاہیے، اس کے اندر عقلی اصول ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ دل نہ ہونا، دل عواطف ہونا ہونا، آنسو نہ ہونا، وہ تحریک منزل تک نہیں پہنچتی۔ حسین نے اسلام کی انقلابی تحریک کو جو چیز دی ہے نا اس کا نام ہے عشق رسول۔ मन तश्री की इतना सवाब बना लिया कि मम बका ओ अब का ओ तबा का वजबत लहुल जन्ना। माय रमजान और मुहर्रम को देखिए, माय रमजान को माय मगरिब कहा जाता है ना, खुदा गुनाह बख्श देता है, ऐसे है या नहीं? कुरान मजीद में भी है, रवायात में भी है कि इस महीने में खुदा गुनाह को बख्श देता है, लेकिन जन्नत की जमानत नहीं देता, बहिश्त की जमानत नहीं देता खुदा, गुनाह बख्श नहीं है, जन्नत की जमानत नहीं है। लेकिन मुहर्रम वो महीना है जिसमें हुसैन पर अश्क बहाना फकत गुनाहों की बख्शिश नहीं है बल्कि मासूम जन्नत की जमानत देते हैं, जन्नत की। मम बका ओ अब का ओ तबा का वजब लहुल जन्ना, जो रोए या रुलाए या रोने वाली हालत बना है, गमगीन है, महजून है, इस कैफियत में हो वजब लहुल जन्ना, मासूम फरमाते उस पर जन्नत क्या है? मासूम फरमाते हैं नफस उल महबूब में जुल्म ना तस्बीह, वो शख्स जो हम पर जुल्म होने की वजह से महबूब है, मगमूम है, इस गम की हालत में जब वो सांस लेता है ना, उसका सांस लेना तस्बीह गुनाह। मासूम चाहते लोग करबला से मुत्तसिल हो जाए, करबला से जुड़ जाएंगे, करबला के करीब हो जाए, करबला से दूर ना रहे, करबला के करीब होंगे खुदा के करीब हो जाएंगे, कुरान के करीब हो जाएंगे, रसूल के करीब हो जाएंगे, अहले बैत के करीब हो जाएंगे। और जो जाज़िबा करबला में हुसैन में है ना, वो कहीं नजर नहीं आता। हुसैन वो हस्ती है हत्ता जिससे कोई शरीफ काफिर भी है ना, वो भी हुसैन से मोहब्बत करता है। हुसैन गुनागारों के दिल को भी जज्ब कर लेता है, हुसैन हर एक को जज्ब कर लेता है। हुसैन के लिए ईसाइयों ने भी कलाम कहा, हिंदुओं ने भी कहा, सिखों ने भी कहा, हर एक ने कहा हुसैन के जज्ब हो जाए करबला हुसैन के, और करबला मेहमान बनते मेहमान मासूम क्या फरमाते हैं, नफसुल महमूम ले जुल्मना तस्बीह। अगर कोई शख्स हम पर जुल्म होने की वजह से गमगीन है, गमगीन छठे इमाम की रवायत है, और उस हाल में जब वो सांस ले रहा होता है ना, ये सांस लेना तस्बीह है, अजीब है। खुदा ने कुरान में कहा इन्नल्लाह ला युज़ी अजरल मोमिनीन, अजर अलमोसनीन, खुदा मोमिनों के या नेकी का काम करने वालों का अजर जाया नहीं करेगा, हुसैन का अजर जाया हो जाएगा, करबला का अजर जाया हो जाएगा। करबला मरकजी नुकता है, सब ने हुसैन की तरफ तवज्जो दी, सब ने लिहाजा हमारी इस मजलिस के बारे में रवायात के अंदर है, मजलिस जो है अल्लाह मजलिस मुसल्लल्ला है, ये वो जगह है जिन पर खुदा दुरूद भेजकर खुदा के हुसैन इमाम है, हुसैन हादी और पेशवा है, हमारी हिदायत के लिए करबला है, हमें जिंदगी की मुश्किल का हर हल करबला से लेना। 33 रोजा जंग में जब इसराइल को शिकस्त हुई लुबनान में 2006 में, तो इसराइलियों ने एनालिसिस किया कि हमें क्यों शिकस्त हुई है, क्या हमारा असला कैसे से कम था, हमारी प्लानिंग में प्लानिंग से कम था, क्या था, तैयारी नहीं थी हमारी उनके मुकाबले में, उनके पास था रमजान के बाद छोटा असला, उन्होंने तजिया और तहरीर लिखी, उसमें लिखा कि हमें दो नामों ने शिकस्त दी है, एक का नाम है हुसैन और दूसरे का नाम है जैन। इस रेजिमेंट में हमें हुसैन की शिकस्त दी है और जैन पे हुसैन इन्हें सिखाता है कि यजीदों का मुकाबला कैसे करना है और ज़ैनब ने सिखाती है कि यजीदियत का मुकाबला करने के लिए बच्चे कैसे तैयार करने हैं और शहीदों के रास्ते पर साबित कदम कैसे रहना है। हमें हुसैन और ज़ैनब ने शिकस्त दी है दो नामों में और जब तक शियों के पास ये दो नाम रहेंगे हुसैन और ज़ैनब ये हमें शिकस्त देते रहेंगे। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि बिना ने आप जन्म दिया बाद एक माँ के दो बेटे तीन बेटे चार बेटे भी शहीद क्या कहते थे। मैंने खुद माओ से सुना है ये कहती थी कि बेटा तुझे हुसैन के लिए अकबर पे फिर जवान बेटे की हमने कि दरवाजे पर लिखा होता था हमें बच्चा हमारा शहीद हो गया अफसोस करने ना हमें मुबारक देने के लिए हमारा बच्चा हुसैन के पास से मौला के पास जिंदगी देता है हयात देता है जुर्रत हौसला शुजाअत बसीरत हिकमत तदबीर आगही शऊर देता है। रवायत अजीब है बहुत बुलंद करता है हुसैन इस असवल साधने से निकाल देता है। एक मकाम पर ज़ैद शहाब छठे माँ के सवाल करता है मौला मालिमन ज़ारन हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अगर कोई इमाम हुसैन की ज़ियारत करे तो उसका क्या क्या इमाम फरमाते हैं मन ज़ारन हुसैन का मन ज़ारन अल्लाह फी अर्श जिसने हुसैन की ज़ियारत की ऐसे जैसे अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत की हुसैन इंसान को कुर्ब खुदा की मेराज तक ले जाती है कुर्ब खुदा की मेराज तक ले जाती है। और ज़ाहिर हुसैन वो है कि क़यामत के दिन जिससे खुदा कलाम करेगा खिताब करेगा गुफ्तगू करेगा वो इतना मुकद्दस है और क़यामत के दिन अल्लाह के नबी उसे अपने दस्तरखान पर अपने साथ रखेंगे जो ज़ाहिर हुसैन होगा और उसे कहा जाएगा ज़ाहिर हुसैन को खुद में जब मन अहबता वादखिल हो फिल जन्ना जिसका तेरा दिल चाहता है हाथ पकड़ और जन्नत में ले जा आज के दिन तू शाफी रोने में से है जन्नत हुसैन की है। सही रवायात में है कि अल्लाह ने जन्नत को नूरे हुसैन से खल किया है अगर जन्नत को जुबान मिले और उसे कहा जाए तू तारफ करवा तो वो कहेगी अना मिनल हुसैन मैं हुसैन से
नारे तकबीर नारे रिसालत
मोहतरम में ज़ाहिर हुसैन कितना मकाम इसको मिल जाता है। क़यामत के दिन कहाँ होगा उस मकाम पर होगा जहां अल्लाह के नबी बैठे और रसूलुल्लाह के दस्तरखान पे वो ग़िज़ा खाएगा जो अल्लाह का नबी पेश करके खाएगा। अजीब है अजीब रिस्क और रोजी और मुकद्दर है इसका और इंसान मुतहय्यर होता चला जाता है वाकियत हैरत ज़दा होता है कि क्या मौजज़ा करती है ज़ात हुसैन इंसान के बारे में जो भी वसल हो जाए हुसैन से इंसान हुसैन वहां ले जाता है जहां हुसैन खुद मौजूद है इतना बुलंद करता है। इमाम की बारगाह में रसूलुल्लाह के आगोश में हुसैन मौजूद है प्यार कर रहे हैं और ताज्जुब करके जनाबे आयशा कहती है हुसैन बहुत प्यार करते हैं क्यों ही न समरा तो शुआदी वकुर्रा तो ऐनी ये मेरा मेवा है जिले रातों की ठंडक है लेकिन मेरी उम्मत में से तीन दिन का प्यासा जिले उन्हें वो रात कत्ल कर देगी और जो शख्स मेरे हुसैन की ज़ियारत करेगा ना उसको मुझ मोहम्मद के एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा मुझ मोहम्मद के एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा हैरान हो गई आपका एक हज और एक उम्रा कहानी मेरे दो हज और दो उम्रों का सवाब आपके दो हज और दो उम्रे कहानी मेरे चार हज और चार उम्रों का सवाब यहाँ तक कि मकाम पर पहुंच गए थे मेरे नवे हज और नवे उम्रों का सवाब तवज्जो चाहते हैं रवायत में तो बड़े सही है हिकमत देखिए इंसान का हर अमल जाया हो सकता है कुरान मजीद में है कि बाज़ गुनाह इंसान के अमाल को क्या करते हैं खत्म कर देते हैं आंखें वगैरह हो जाए इंसान के तमाम अमाल हस्त हो जाते हैं नमाजें हाथों से होती हैं रोजे हाथों से होते हैं हाज जितनी भी इबादत है ना सारी हाथों से होती है लेकिन ज़ियारत हुसैन इंसान का तो अपना अमल नहीं है अमल रसूल बन गया और जो चीज अमल रसूल बन जाए वो कभी हद नहीं होती यही वजह है कि हमारे पास फुकहा का फतवा है कि अगर इंसान में इस्तेआदत हो तो जिंदगी में एक दफा ज़ियारत इमाम हुसैन वाजिब है वाजिब इतनी तमाम फजीलतों का फलसफा क्या है क्यों ऐसे हर इमाम कहकर मना जाते हो और लोगों को तशरीक करकर मना जाओ और दुश्मन आगे से इतनी सख्ती करे हाथ पांव काटे इमाम हुसैन के हरम को पर हल चला दे नब्श कबर करे रोके भी कर बना जाए रोके कोई आंसू न भाए हुसैन के गम में रोके कोई अदादारी ना करे हमें पता है इसकी वजह क्या है आजादारी तवज्जो चाहते हो किसकी आजादारी है अगर हमें पता हो किसकी अजा है पहली बात यह कि आजादारी हमें मजलूम के साथ ला खड़ा करती है जालिमों के मुकाबले में ले आती है वो कौम वो अफराद वो लोग कितने मुकद्दस हैं जो मजलूम के साथ हो जालिम के मुकाबले में क्या हमें एहसास होता है कि जब हम आजादारी कर रहे होते हैं एहसास होता है कि हम मजलूमों के साथ हैं और तारीख के सारे जालिमों के मुकाबले में ये एहसास होता है हमारे अंदर आजादारी कहां ले जाती है जालिमों के मुकाबले मजलूमों के साथ दाखिला करती है इनकलाब लाती है जिंदगी के अंदर एक आंसू उठाते कहां जालिमों के कैंप से उठाकर मजलूम के साथ ले आते ये एहसास हमारे अंदर है कि हम आजादारी जब करते हैं तो हम कहां खड़े होते हैं क्या खाली इसी तरह से आंसू बहाना मुकद्दस है इसी तरह से आजादारी और मातम करना मुकद्दस है बगैर हिकमत के बगैर फलसफे के बगैर मकसद के और सबब के इसमें कोई शक नहीं है आजादारी मुकद्दस है आजादारी कुरान में है आजादारी सुन्नत रसूल में है आजादारी सीरत आइमा में है आजादारी बशर की सारी तारीख में है कौन है जो अपने अजीजों के गम में गमगीन नहीं होता है कोई दुनिया में लेकिन क्यों है ये बहुत अहम चीज है इमाम खुमैनी ये जुमला कहते हैं महर्चदारी अजगर बराबर कहते हैं जो इनकलाब आया ना इनकलाब ये क्यों आया है करबला की वजह से शाह का तख्त उल्टा है करबला की वजह से अमेरिका और इसराइल को अपने शिकस्त दिया करबला की वजह से सद्दाम को शिकस्त दिया करबला की वजह से दुनिया के सारे फिरौनों की साजिशों को नाकाम बनाया है करबला और लड़ाई की वजह से यह सरमाया है हिजबुल्लाह ताकतवर है करबला और नबाली की वजह से शदीद दौर में ऐसे हैं, उन्हें देखे वो किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं। मैं भी 4 महीने पहले लुबनान था, शहीद इमाद मुगलिया के वालिद से मिला, उनके 3 बेटे शहीद। आप यकीन करें उसके चेहरे पर जरा मलाल नहीं था। मुझे वो खुद अपने बेटों की कब्र पर ले गया, शहीद इमाद मुगलिया की कब्र पर ले गया, हमारे साथ गया, इंतजार कर रहा था और खुशहाल था। सैयद हसन नसरुल्लाह का बेटा जब शहीद हो गया और इसराइल ने कहा कुछ शरायत है, इन शरायत की बुनियाद पर हम आपके बेटे की लाश वापस करेंगे, कहा मेरा बेटा बाकी लुबनानी शहीदों से अफजल नहीं है। मेरा बेटा फिदा हो जुल्म के रास्ते में, जो इज्जत की जंग लड़ी जा रही है उस रास्ते और उस पर मैं भी फिदा हो जाऊं तो परवाह नहीं है। करबला से सीखा है, जब उनके शहीदों के जनाजे होते हैं तो वो क्या कहते हैं, या हुसैन कहते हैं ना, आजादारी करते हैं ना, मातम करते हैं ना, गिरिया करते हैं ना, मन से आजाद करते हैं ना, किसका रब मनाते हैं, हुसैन का रब। हम कितने मजलूम क्यों ना हो, हुसैन कितने नहीं है, हम कितने अजीज जलाल क्यों ना दे दें, अली अकबर जैसे नहीं है। वो माए कहां से हौसले लेती है, मादरे अली अकबर लैला से, मादरे कासम से, मादरे अली असगर से हौसला लेती है, सानिया जहरा से हौसला लेती है, करबला से इज्जत का सबक देती है। मैंने फिलिस्तीन की जाद इस्लामी के कायद शहीद डॉक्टर फदी शकाकी एक दफा एक कॉन्फ्रेंस से उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनके साथ बातचीत हुई, सैयद हसन नसरुल्लाह मेरे दोस्त भी थे, हम इकट्ठे पढ़ते थे, तो इन्होंने मुलाकात करवाई थी उनसे। मुझे कहा था कि आप आ जाए, एक दोस्त से मुलाकात करवाएंगे, वो जिला वतन थे, सीरिया में रहते थे, वहां से आए थे इस कॉन्फ्रेंस में। वहां बातचीत चली तो मैंने उन्हें कहा कि आप कब तक इसराइल के साथ लड़ोगे, अपने जवानों को असला दे दिए हुए, मिलिटेंट बना दिया हुआ, तो किताब दो कलम दो ये पढ़े, सारी दुनिया आपकी मुखालफ है और आप लोग कभी भी फतह हासिल नहीं कर सकते, शिकस्त खा जाओगे, अरब तुम्हारे साथ नहीं है, दुनिया साथ नहीं है, अमरीका साथ नहीं है, लोग आपके साथ नहीं है, कब तक लड़ोगे उनसे। मुझे अभी कहता है कि मुझे हैरानी है कि तुम शिया हो, ये कहते हो। एक चीज उनके इख्तियार में, एक हमारे उनके इख्तियार में जुल्म करना और हमारे इख्तियार में अभी जुल्म किया के सर न
झुकाना।
हम मैदान में डटे रहेंगे, सीने में गोली खाएंगे, पुश्त पर नहीं खाएंगे और तारीख में लिख जाएंगे अपने खून से कि हमने गासिबों के गस्म को कानूनी नहीं बनने दिया, लीगल नहीं होने दिया, लेजिटिमेसी उसकी नहीं बनने दी, हम अपने खून के आखिरी कतरे तक इनके मुकाबले में डटे रहेंगे। जुमले इसके सुने, जुमले तो एक शिया के हो सकते हैं, जब वो शहीद हो गया तो उसका जो नायब बना डॉक्टर रमजान अब्दुल्ला, उसने टीवी पर इंटरव्यू दिया, कहा कि मुझे अक्सर ये इमाम हुसैन के बारे में किताबें देता था, बजाय अहले सुन्नत था, मैं किताबें सब पढ़ा करता था इमाम हुसैन की, और किताब दे के पढ़ लेता था, जब मुझसे वापस लेता था फिर एक और किताब इमाम हुसैन के बारे में, फिर वो किताब इमाम हुसैन के बारे में। मैंने एक दिन उसे कहा कि आखिर क्या वजह है कि आप मुझे अक्सर किताबें इमाम हुसैन के बारे में देते हो, कहने लगा देखो हम जुल्म के साथ टकराव के जिस मरहले में ना, ये करबलाई मरहला है, जब हर तरफ से मुहासरे में आ जाओ, हर तरफ से नाउमीदी की तारीकी छा जाए, उस वक्त तुझे नाउमीदियों से जो निजात देगा और चिरागे उम्मीद कराएगा वो हुसैन होगा। कहती थी जब हम जिलावतन होकर सीरिया गए, मुझे अक्सर ये अबसैन में रखे सुनत थे, अक्सर मुझे जनाब सानिया जहरा के हरम में छोड़ जाता था, 3-4 घंटे में वहां बैठी रहती थी, बाज़ गार में तंग आ जाती थी, शुरू शुरू में एक दिन मैंने से पूछा क्या वजह तुम मुझे यहाँ छोड़ने कहाँ चले जाते हो, साथ ले जाया करो, यहाँ क्यों छोड़ जाते हो? तो मुझे कहने लगा इसलिए यहाँ छोड़ता हूँ ना, तुझे पता होना चाहिए ये बीबी जो है ना वो शहीदों के खून की बारिश भी है। जिस रास्ते में मैं चला हूं ना उस रास्ते में चलने वालों की खवातीन की के लिए नमूने अमल ये बीबी है कि मुक्तदा ये बीबी है, पेशवा ये बीबी है, ये बीबी है जो उनकी हमारी रहनुमाई करती है। तेरे लिए ये बीबी नमूना अमल होने चाहिए कि किस तरह शहीदों की वारिस बीबियां उनकी शहादत के बाद उनके रास्ते पर साबित कदम रहती है, नासना सहती है, सख्तियां दिखती है, मुसीबतें देखती है, लेकिन जुल्म के मुकाबले में सब नहीं सुनाती है, उनके पाकीज़ा खून की पासदारी करती है। ये शख्स ऐसा शख्स कहां से सीखा उसने कि जब पूरी अरब दुनिया इसराइल के सामने सर झुका गई और इसराइल के अंदर लबैक या हुसैन कहते हुए इस्राइली यजीदियत के मुकाबले में खड़ा हुआ, कहां से सबक लिया? करबला से। करबला इज्जत से जीना सिखाती है। करबला के इमाम ने क्या कहा था? अला इन दाय बन दाय कद रकद अली बैन सिल्लत व दिल्ला है हाथ में नजिल्ला। इस जना जादे के जना जादे बेटे जिसका बाप भी जना ज्यादा खुद भी जना ज्यादा हुसैन इस तरह से कह रहे हैं ये मेरे मुकाबले में मुझे ऐसे जो राय बना खड़ा किया है या मैं तलवार के सामने आ जाऊं या जिल्लत कबूल कर लू है हालत में नजिल्ला मैं जिल्लत कबूल नहीं करूंगा। या अल्लाह ज़ालिका लना व रसूलहु वल मोमिनून व हुजूरुन ताबत व तहरत। ना ये अल्लाह कबूल ना रसूल कबूल और ना मोमिनों को कबूल और ना वो पाक गोदे से मानेगी जिनमें हमें तरबियत पाई। जिल्लत कबूल नहीं है। जुल्म के मुकाबले में सर झुकाना जिल्लत, लाकानूनियत के मुकाबले में चुप हो जाना जिल्लत, मेरठ पामाल हो लापरवाह रहना जिल्लत है जिल्लत, बेहुईयत बेदीन जालिम चोर डाकू राजान मुसल्लत हो जाए गर्दनों पर आके बैठ जाए और चुप साथ रहना ये जिल्लत है हुसैन की निगाह में। हुसैन नहीं बर्दाश्त करता कि मुआशरा सोसाइटी यजीदियत के मनहूस साए में पले, इमाम नहीं बर्दाश्त करते। आजादी का इमाम है वो, हुरियत का इमाम है वो, इज्जत का इमाम है वो, करामत और शरफ और वकार का इमाम है वो, बहादुरी जुर्रत और हौसलों का इमाम है वो, इस्तकामत और मुकावमत का इमाम है वो, बागी बनाता है बागी यजीदियत के खिलाफ और फिरौनों के खिलाफ। क्या हम बागी हैं? क्या हमने अपने बच्चों को तैयार किया है जुल्म के मुकाबले में स्टैंड लेने के लिए, जालिमों का मुकाबला करने के लिए, मजलूमों को उनके हुकूक दिलाने के लिए? मुआशरा उस वक्त ऐसा ही था जब हुसैन उठे थे, मुआशरे में क्या बिगाड़ था? जुल्म के मुकाबले में खामोश, यजीद के मुकाबले में चुप, ना इंसानी के मुकाबले में खामोश, हुकूक पामाल हो रहे हैं, दीन पामाल हो रहा है, दीनी कदरें पामाल हो रही हैं, हर तरफ सन्नाटे सुकूत सुकूत। क्या आज ऐसे नहीं है? क्या दीनी कदरें पामाल नहीं होती? हमारे टेलीविजन क्या कर रहे हैं? दीन को उजागर कर रहे हैं, दीनी कदरों को पामाल कर रहे हैं, बेहजाबी बेगैरती बेशरफी बेहमियत की तरफ नहीं कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी के ऊपर आदिल हाकिम है, मुनसिफ हाकिम है, कहां खड़े हैं आज? हम करबला की याद मनाने बैठे हैं, मुर्दों को हक नहीं है करबला की याद मनाने का, जिंदों को हक है करबला की याद मनाने का। मारन चाहो मेरा बोलू आज ये नहीं सजू पड़े मोहम्मद वाले
सलावात।
क्या अकलमंद थे या नहीं थे, समझदार थे? एक्सट्रीमिस्ट थे, इंतहा पसंद थे, नहीं थे ना। ये करबला में अपनी औलाद, बच्चे, बीबियां, नामूस लेके चले गए। क्यों? ये एक मजलूमी भी है, यानी अब मेरे पास शहीद बचा है जिसका जरिए मैं जान दूं, कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं। रसूल क्यों नहीं खवातीन लेके गए? मौलवी क्यों नहीं खवातीन लेके गए? हुसैन जानते हैं मेरे पास रास्ता ही नहीं। नामूस से रसूल हम नहीं जानते, इस बीबी को सानिया जा रहा था, हमें नहीं पता है। इसे मारफत थी ना, सारी जिंदगी खून रोया इस बीबी के गम, ज़ैनब कुबरा के गम। एक जुमला ज़हन में आगे पैदा हुआ, किसी अहले माना ने, किसी अरब हस्ती ने बारे में से पूछा कि आपकी कलमात में है कि इमाम हुसैन को खिताब करके कि मैं आंसुओं के पुतले खून रोऊंगा, मौला कौन सा गम आपको खून रुलाता है? क्या हुसैन की शहादत कहानी ये वो गम है जिस पर हुसैन रोते हैं? अली अकबर की शहादत कहानी वो गम है जिस पर अली अकबर रोते हैं? अब्बास की शहादत कहानी अब्बास रोते हैं? क्या गम है? मेरी दादी ज़ैनब कुबरा का सर नंगे बाजार। जो मेरी अकल दादी तेरे सब्र हौसले पर, तेरी मजलूमी पर, तेरी मुनाजातों पर, जिसको बड़े मुनाजात करती थी, जख्मी सर के साथ करती थी, जख्मी बदन के साथ करती थी, कह सकती थी यजीद को जंग खत्म हो गई है, मैं चली जाती हूँ मदीना, हमारा तुमसे कोई टकराव नहीं है, सरेंडर कर दी, झुक जाती है। देखिए ऐसे लड़का के लिए ये मजलूम थे, बहुत मजलूम थे, आप नहीं तसव्वुर कर सकते। तसव्वुर करें ना फिर अपनी इज्जत और नामूस के बारे में, उसके हाथों पर रस्सियां हों, सरों पर चादरें ना हों, जालिमों ने ऊंटों पर बैठाया हुआ जो परमात्मा हो, ऊंटों को दौड़ाया जा रहा हो, उनके हाथों से बच्चे गिर रहे हों, जो ऊंटों के पांव तले आ रहे और माए हसरत के साथ उन्हें बाजारों में लाया जाए, उनका तमाशा दिखाया जाए, लोगों को उन्हें पत्थर मारे जाए, उन पर आग फेंकी जाए, उन्हें दुश्नाम दिए जाए। सानिया ज़हरा को बीबी है, मैंने बस मतलब जो मैं देखा है, जब इमाम अली और इमाम हुसैन हुसैन थे ना, बीबी अपने घर से साथ ही घर से बीबी जब आती ना अपने नाना के हरम और माँ ज़हरा की कब्र पर आती, राह के वक्त आती थी, अली और हसन हुसैन साथ होते थे, जब हरम के करीब पहुंचती ना तो इमाम आगे बढ़कर चराग हरम बजा देते थे। आज के शायद लोग भी बात समझ ना आए, इमाम से पूछे ऐसे क्यों है, शायद इमाम जवाब दें मतलब रात की तरीकी है, मेरी गैरत दोबारा नहीं करती, मेरी बेटी के कद पर भी किसी की नजर आई। और ये बीबी करबला से शाह और शाम तक हर जगह सवाल करती रही, मुसलमानों मैं तुम्हारे रसूल की बेटी हूं, आंखें बंद कर लो, सर झुका लो, मुझे चादर दे दो, लेकिन झुकी नहीं, हिम्मत नहीं हारी। यजीद को खिताब करके अजीब जुमला कहा, पहला कहा यजीद ये इनकलाब जमाना है ना, मुझे तुझसे कलाम करना पड़ा। ज़ैनब तो है जिससे मलाइका कलाम करें, ये इंकलाब ज़माना है, ज़ैनब तेरे दरबार में है, तुझसे कलाम करें। जीत लेकिन कित कहे तक बस आसान है, वना सिर्फ जो तक वल्ला ना तक मुझे करना वना तो ना करना। यदि तू जितनी जाने चलना चलना चलने जितनी ताकत ना करना करना जितनी कोशिश करना 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 तेरे दरबार में अली की बेटी अपने अल्लाह की कसम खा के कहती है ना तू हमारे जिक्र को मिटा सकेगा ना हमारी बहन को मिटा सकेगा। वही हौसला है, वही हिम्मत है जो हुसैन की, वो परचम जो हुसैन के हाथों से गिरा सानिया ज़हरा ने बुलंद किया, और करबला की जंग को रोज आशूर में मुनासिब नहीं होने दिया, और बियाबान करबला की जंगल में महदूद नहीं होने दिया। यजीदियों के खिलाफ ये जंग हर गली हर कूचे کچا ہر شہر ہر گلیا ہر بازار اور دربار میں لڑی ہوئی تھی بیٹی نے, اور آج تک یزیدی سے جنگ جاری ہے جو ثانی عزادہ نے شروع کی تھی. یہ عزاداری یہ جنگ ہے یزیدیت کے ساتھ, یہ تسلسل ہے زینبی تحریک کا, اس سلسلے کا جو کربلا سے شروع ہوا تھا. ہمیں بار پتہ نہیں ہے نا, چوتھے امام سے جب کہا جاتا ہے بولا کیوں روتے ہیں, امام کہتے ہیں نا کہ قرآن کہتا ہے کہ یوسف کا ایک نہیں کئی بیٹے تھے, ایک بیٹا مرا بھی تھا گم ہوا تھا. قرآن کہتا ہے یوسف اتنا مرا کہ آنکھوں میں بینائی چلی گئی, کمر جھک گئی, میرا کربلا میں ایک نہیں 18 یوسف مارے گئے. امام سے کہا جاتا ہے امام شہادت تو سعادت ہے نا, تڑپ کے کہتے شہادت تو سعادت ہے, لیکن کیا یہ بھی سعادت ہے کہ ناموس بازاروں درباروں سے. بعض علماء کہتے ہیں کربلا میں جب لڑی نا عباس نے علی اکبر نے اور محمد نے نا, یہ ہاشمی روایت کے مطابق جنگ تھی, لیکن جو مر زین العابدین کو پیش آیا ہم لوگ ہاشمی روایت میں تھا. تمہیں پوچھا جاتا بولا سب سے زیادہ مصیبتیں کھانے کہتے ہیں اشام اشام اشام. عزیزو آئیں نا کربلا سے سیکھیں, بیدار ہو جائیں. حسین رزق کے شعور بانٹتا ہے, رزق کے شجاعت دیتا ہے, رزق کے بصیرت دیتا ہے, رزق کے وفا دیتا ہے, رزق کے حیا دیتا ہے, رزق کے عزت دیتا ہے, رزق کے عزت اور پاکدامنی دیتا ہے. ہمارے جوان آئے تزکیہ حاصل کرے حسین سے, کربلا محرم تزکیہ نفوس کا مہینہ ہے, باطنی طہارت کا مہینہ ہے. محرم آئے ہمارے جوانوں کی آنکھیں جو غم حسین میں عشق بہائیں پھر بھی وہ گناہ کرے, یہ آنکھیں حسین کی ہیں, یہ زبان حسین کی, کان حسین کا, یہ وجود حسین کا ہے, اس پر حسین کی حکومت ہونی چاہیے نہ یزید کی. پاکیزگی آئے, شرافت آئے, طہارت آئے ہمارے اندر. آپ حسین بھی ہو, شیطان نے قسم کھائی تھی اغوا کرے گا آپ کو, آپ کو اغوا کر کے لے جائے گا, شیطان نے قسم کھائی ہے قرآن میں. حسین ہر سال آتا ہے نا, محرم آتا ہے تو حسین آتا ہے ہمارے دلوں میں. کوفہ والوں نے حسین کے لیے دروازے بند کر دیے تھے نا, اللہ نے بڑے دروازے کھولے اس کے لیے, مومنوں کے دلوں کے دروازے. امام چاہتا ہے کہ ہمارے دل سے نا کوفیوں کو باہر نکال پھینکے تاکہ ہم حسین کا ساتھ دیں نہ حسین کے خلاف. لیکن کب جب حسین کا ساتھ دیں گے ہم, اپنے آپ کو حسین کے حوالے کریں گے تاکہ ہمارے دل میں آباد کوفیوں کو وہ باہر نکال پھینکے اور ہمیں حور بنا ڈالے. حور ضروری ہے, تہذیب نفس کا مہینہ ہے. ماہ رمضان کے ساتھ بہت مناسبتیں ہیں ماہ محرم کی, مغفرت کا مہینہ, بہشت میں پہنچانے کا مہینہ, پاکیزگی اور طہارت کا مہینہ, قرآن ناطق کے نزول کا مہینہ. ماہ محرم میں قرآن صامت نازل ہوا ہے نا, اور ماہ محرم میں, ماہ رمضان میں اور ماہ محرم میں قرآن ناطق نازل ہوا ہے. نازل ہوا ہے کہ ہم سب کی دسترس میں آ گیا ہے. کب نازل ہوئے؟ جب گھوڑے سے پہلو میں نیزہ کھا کے اور سینے میں تیر کھا کے نازل ہوئے, اس گودی میں, اس قتل گاہ میں. اور عجیب کہنی ہے جناب میرے حسین, اس گودی میں ہمارے لیے نازل ہوا ہے حسین, یہ قرآن ناطق ہماری دسترس میں آیا ہے حسین, کہ سفینہ نجات بن گیا ہمارے لیے, کشتی نجات بن گیا, چراغ ہدایت بن گیا ہمارے لیے. قرآن اگر ذالک کتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین ہے نا, تو حسین بھی کیا ہے؟ چراغ ہدایت ہے. حسین بھی وہی کام جو کتاب ثابت کرتی ہے ہدایت متقین کا, وہی کام جو قرآن ناطق کرتا ہے ہدایت متقین کا, یہ ہمارے لیے ہے. میں بھی اس کے ساتھ مماثلت ہے, کئی مسلم مماثلت ہے حجم اور بائے رجا کے ساتھ. حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کل عرض کروں گا انشاءاللہ, وہ سارے مناسک جو حاجی انجام دیتے ہیں نا مکہ میں, وہ سارے مناسک انجام دیے کر بنا سارے مناسک انجام دیا. لہذا حسین ہدایت کا کامل عملی نمونہ, جامع عملی نمونہ ہے. ہماری زندگیوں میں انقلاب لا سکتا ہے. ایک فرد کی زندگی کے اندر جتنی بھی انتشار ہے ایز اے انڈیویجل, اس کے اندر اگر جو ٹوٹ پھوٹ ہے, توڑ پھوڑ ہے, جو انتشار ہے یکسوئی نہیں ہے, اس تمام انتشار کو ختم کر کے وحدت اور یکسوئی ایجاد کر سکتا ہے حسین انسان کے اندر. انسان کو وحدت دے گا, بکھرا ہوا انسان اندر سے منتشر ہے, اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اندر سے متضاد افکار کا مالک ہے, اندر سے اس تضاد کو جو اس کے اندر ہے کون ختم کر سکتا ہے؟ حسین. حسین وہ منارہ ہدایت ہے. ایک شیعہ کیسے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, ادھر سے یا حسین بھی کہتا ہے, ادھر سے تحریک انصاف نے عمران خان کے پیچھے چلتا ہے. عجیب نہیں یہ کیسے دماغ کرتا ہے؟ کیا حسین نے کہا ہے, حسین نے ہدایت کی ہے کہ عمران خان کے پیچھے چلو, یا زرداری کے پیچھے, یا نواز شریف کے پیچھے؟ یہ اندرونی طور پر جو فکری تضاد ہے, جو انتشار ہے اس کے اندر, جس کی جو اندر کثرت پائی جاتی ہے, اس کو وحدت میں جو بدل سکتا ہے اس کا نام ہے حسین.
کیا
اس توڑ پھوڑ کو نکال سکتا ہے؟ ہم نے تو عمر ابن عبدالعزیز کو اپنا حاکم اور امام نہیں مانا, جو عادل تھا, جس نے باغ فضل بھی اٹھایا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ انتشار ہے, یہ حسین کی بات پتہ نہیں ہے, یہ اہل بیت کی بات پتہ نہیں ہے. ہمیں ہم کھوکھلے ناروں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. حالانکہ جو حقیقی حسینی ہو نا, حقیقی حسینی یزیدیت میں کتنے نقاب بھی کیوں نہ پہنے ہو, یزیدیت کو دور سے پہچان لے گا حسین کا ماننے والا. حسین بصیرت دیتا ہے, نور بصیرت دیتا ہے حسین. لہذا ہمیں بیدار ہونا ہوگا, کربلا کی آنی ہے, شعور لینا ہوگا حسین سے. کربلائی شعور, کربلائی بصیرت, کربلائی آگی اور معرفت, کربلائی جرات اور حوصلہ, کربلائی حکمت اور تدبیر وہاں سے لینی ہوگی. وہ امام ہے, وہ ہادی اور پیشوا, وہ منصوص بن اللہ ہے, وہ معصوم ہے, اس کی عصمت کی گواہی قرآن دیتا ہے. قرآن لہذا کربلا کو پہچاننا ہوگا, کربلا کو سمجھنا ہوگا. یہ کیوں ایسے ہوا کہ کلمہ پڑھنے والوں نے رسول کے نواسے کو مار ڈالا, بڑی بے دردی سے مارا؟ ایک بات کو ناراض نہ ہونا, بہت سے ظلم انہوں نے کربلا میں ایسے کیے جو شاید یزید نے انہیں نہیں کہے تھے. یزید اتنا کہا تھا نا حسین کو مار دو, سختی کرو اس کے ساتھ, اتنا کہا تھا نا, یہ لیٹر لکھا تھا نا, خود حسین آخذہ شدید, اگر بیعت نہ کرے سر کاٹ دو. لیکن اتنی انواع اقسام کا ظلم جو کربلا میں ہوا, ایک ایک جزئیات یزید نے کرنی نہیں تھی. یہ خود اپنا عملی طور پر انجام دینے والے تھے جو کربلا آئے تھے, اور کلمہ پڑھتے تھے, مسلمان تھے, لا الہ الا اللہ کہتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اذان دیتے تھے, قرآن پڑھتے تھے. بعض نے منت مانی تھی قتل حسین کے بعد ہم مسجد بنائیں گے نظر کے طور پر. ایسے تھا دوستو, کبھی سوچا ایسے نہیں ہو جاتا ہے؟ کیوں اس ربے دردی سے مارا حسین؟ کیوں لوٹا حسین کے گھر, کیوں بچوں کو شہید کیا اور قتل کیا؟ ایک بے شیر کے گلے میں تیر مارا, اسے پانی نہیں دینا. اتنی تبدیلی کیسے آ جاتی ہے؟ کیا میں سے ایک بھی ایسا تھا جو حسین کو نہیں پہچانتا تھا؟ एक मिठाई साथ। क्या ये वो लोग नहीं थे जिन्होंने हाथ रखे थे उस हैल को कर तूफान जाओ? बहुत से मसाइल समझ आते हैं पर हम नहीं मानते और उनको रद्द कर देते हैं। ठीक है वो यजीद के पैरोकार हो गए थे, वो अपने ज़ियाद के पीछे चल निकले थे, लेकिन उन्होंने दावत भी मिली ना उस हैल को और बोला। हमने देखा है बाज इलाकों में जब सख्ती होती है ना सख्ती मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के खान में वहां सख्ती है, अगर हुकूमत ने सख्ती की है शिया ही शिया के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं। मेरा घर बच जाए, मेरे बच्चे बच जाए, इसके घर जल जलते ये जेल किया क्योंकि हमारे पास सख्तियां नहीं है ना, हमारा इम्तिहान नहीं है। क्या जमानत है कि हम उस वक्त धोते धो हैं इनके साथ। एक लूटने वाला लूट रहा था बीबी को, तो पूछा लूटता भी है रोता भी है, कहा रोता इसलिए कि आप मजलूम है, लूटता इसलिए अगर मैं नहीं लूटूं तो कोई और लूट ले। इतना वैश्य कैसे हो गए थे, ये मुसलमान थे, जानते थे हुसैन है अली कुफा में हाकिम थे, हुसैन कुफा में रहे थे, ये जानते थे रसूल की बेटी है सानिया जहरा, रसूल की बेटी है, अली की बेटी है, कूफा की शहजादी रह चुकी है। ये सोसाइटी में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई? क्यों हुआ ऐसे? और आज भी मुमकिन नहीं ऐसे हो। बहुत बड़ा लमी है दोस्तों करबला, जहां सबक है हमारे लिए वहां हमारे लिए इबरत भी है। इबरत हमारे बच्चों को हमारे खवातीन को पता होना चाहिए क्यों ऐसे हो गया था, सोसाइटी में क्या तब्दीलियां आई थी, क्या चेंजिंग आई थी, लोगों के अंदर क्या तब्दीलियां आई थी कि लोग वहां जा पहुंचे कि यजीद की हुकूमत को, इमामत को, विलायत को, राबरी को मार लिया, हुसैन को छोड़ दिया। ऐसे आज भी है, कहते या हुसैन है लेकिन सेकुलर है। क्या इमाम हुसैन सेकुलर थे? कह सकता है इमाम सेकुलर थे? लिबरल थे, नेशनलिस्ट थे, अरब नेशनलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, नाउज बिल्ला मिन्ज़ालिक, सोशलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट थे इमाम हुसैन? कैसे मुमकिन है शिया नेशनलिस्ट हो? आज नेशनलिस्ट शिया नहीं है, बहुत है। मैंने वहां भी अगर से कहा मैं बहुत को देखता हूं, हमारे शिया है, मोमिन है, मैंने अल्ताफ भाई के फलसे पर अमल करते हैं, गला फाड़ फाड़ के उसके मैं करते अल्ताफ एक नेशनलिस्ट है। कितने जो आसम जरदारी के फलसफे पर अमल करते हैं, कितने नवाज शरीफ के, कितने अभी तैयार हो रहे हैं कि इमरान खान के फलसफे पर अमल करें, उसके पीछे चले जाते क्या है यार? हुसैन के साथ इमाम हुसैन के साथ मजादार है हुसैन के, लेकिन प्रैक्टिकली अपनी सियासी इज्तमाई जिंदगी में वफादार है किसी और के। ये फिक्री खलफशार क्यों है? ये फिक्री इंतशार क्यों है? ये अमली इंतशार क्यों है? उनके दरमियान जो या हुसैन कहते हैं आजादार है आजादार क्यों ऐसे है? कभी सोचा है? इमरान खान कश्मीर में जाते हमारे लिए आसफ अली जरदारी और ये लोग हमारे लिए कश्मीर में जाते हैं, नवाज शरीफ कश्मीर में जाते हैं, इनके लिए गला फाड़े, इनके लिए सीना पीटे। और वो लोग अजीब है जो बजहर क्या कहते हैं हम अपने इमाम जमाना के मुंतजर, एक आदलाना हुकूमत के मुंतजर, एक ग्लोबल हुकूमत के मुंतजर। दोस्तों ये तब्दीलियां आती हैं, उस जमाने में भी आ गई। लोगों ने इमाम से कहा था हम आपसे मोहब्बत तो करते ही थे, फरजा ने क्या कहा था इमाम से कुफा के लोगों के बारे में, कुलूबहुम मआका वसियूफहुम अलैका, उनके दिल तो आपके साथ हैं, तलवारें आपके हाथ में। वो वोट आपको नहीं देंगे, आपका साथ नहीं देंगे। दिल आपके साथ है, कहते हम आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अमली तौर पर आपके साथ नहीं है। आपकी मैं नहीं करेंगे, आपके साथ ही खड़े होंगे। ये है तारीख। पर ऐसे माहौल में इंशाल्लाह आज करोगे दो दिन में बड़े मोहम्मद वाले बात करो। इनवान गुफ्तगू है करबला की शिनाख्त और मार्फत, और वो जो क्राइसिस वजूद में आए थे उसके असबाब क्या थे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि हादी और इमाम है और सोसाइटी की मैनेजमेंट और मुदीरियत करने वाला है, इमाम ने उन क्राइसिस को मैनेज करने के लिए, उनकी मुदीरियत करने के लिए क्या इकदाम किए और उनमें क्या हिकमत थी। गुलपड़े मोहम्मद वाले करबला की शनाख्त इस हवाले से यह अकीदा है कि जिस तरह खुदा मानी को तवज्जो करें, मेरे थके तो नहीं है ना, क्योंकि आप मौलाना उधर मैं सर के साथ होते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि नहीं थकेगा। दुरुपड़े मोहम्मद वाले जिस तरह से टैग खत्म होने वाला है, जिस तरह से खुदा मानी और हकायक को कामिल जानता है ना, उनको बयान करने के लिए जब लफ्ज का इंतखाब करता है ना, तो बेहतरीन लफ्ज उस माने को बयान करने के लिए खुदा इंतखाब करता है, जिसके दरमियान बहुत ज्यादा मुनासिबत और मैचिंग होती है, जो कंप्लीट फिट आता है उस माने के ऊपर। और जब खुदा बयान करता है वो कलाम मौजज़ा बन जाता है कुरान में। इसी तरह से हमारा ईमान और अकीदा है कि ईमान भी सोसाइटी में पाए जाने वाले जितने भी हकायक हैं, मसाइल हैं, हर चीज का कामिल इदराक रखता है ईमान। उससे बेहतर कोई नहीं जानता समझता मुआशरे और सोसाइटी को। लिहाजा हम करबला जिन हालात में वजूद में आया, उस जमाने के हालात का, मुश्किलात का और सोसाइटी में पैदा होने वाली आफात का और युग और कमजोरियों और खामियों का मुतालिया करेंगे, उनको जानेंगे हुसैन के जरिए, सानी जहरा ज़ैनब के जरिए और इमाम सज्जाद के जरिए। उन्होंने सोसाइटी को कैसे बयान किया है, उन क्राइसिस को कैसे बयान किया है, उन मुश्किलात को कैसे बयान किया है, और फिर उनका मुकाबला करने के लिए जो इकदाम किया है उसकी हिकमत क्या थी। बड़े मोहम्मद वाले दोस्तों मोहम्मद वाले मैंने पहले भी ऐसे अर्ज किया अय्याम मुहर्रम अय्याम गम है, और इमाम अलैहिस्सलाम और अहले बैत सारे मुजीबों में ये मुसीबतों का सिलसिला कब शुरू हुआ, जब अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए। पहला मजलूम पहली जिसके गले में रस्सी मांगी गई, शायद आपके लिए लफ्ज आसान ना हो, अली के गले में रस्सी डाली गई तो दरबार पर आई। दूसरी मजलूमा हजरत सैयदा कौनैन बीबी है, जिसके दरवाजे पर जालिम आग लेके गए और कहा अली को पैर भेजो, अगर पैर ना भेजो तो दरवाजे को आग लगा। फिर दरवाजे को आग लग गई और ये शहजादी दर दीवार के दरमियान आ गई, पैर में शिकस्ता हो गया, मुंह के बल जमीन में गिरी और बाबा अल्का कर कहा आ बता आ अल्का से आहा कहा ये फलों पे भागी बाबा अपनी जहरा को दे कि मेरा मुस्लिम शहीद हो गया, मेरा पहलू जख्मी हो गया, मुझे तमाचे मारे गए, मुझे ताजिया ने मारे गए। मैं आग बात कर बीबी वो तमाचे और वो ताजिया ने वो आग जो आपके घर में लगी रुकी नहीं, फिर करबला में आपकी बेटियों के खेमों में लगी। जाने आपकी बेटियों के खेमों में आपकी बेटियों को मारे गए। यही वजह कि जब साकिया जहरा हुसैन के लाशे पर आई थी ना, हुसैन को खिताब करके कहा था, हुसैन मैं जानती हूँ ना, बहने अपने भाइयों के लाशे पे गौर और कफन छोड़ के नहीं जाती। हुसैन तूने वसीयत की थी ना यतीमों का ख्याल रखना, उठ देख ना अपनी ज़ैनब को, तेरे यतीमों को बचाते बचाते तादिया ने खा खा के मेरे बाजू से आ गए। आज रखूंगा और कभी बाजार शाम दरबार शाम सिद्धानों में सिद्धान कूफा में अपनी माँ को याद करे कह रही थी, है ना उम्मी फातिमा बिजत रसूल, मेरी अम्मा फातिमा बिजत रसूल तू कहाँ है, आ ना अपनी ज़ैनब को देख, माँ मेरा सर भी जख्मी है, मेरा बदन भी जख्मी है। वो आग आंखों को लगी, वो तमाचे बसों बच्चों को लगे, उनके कान जख्मी हुए, और अली जो रस्सी आपके गले में डाली गई थी ना, फिर ये रस्सियां रुकी नहीं, कभी आप बेटियों के बाजुओं में आई, कभी थोक जंजीर बल के सज्जाद के गले में आए, और बाजारों दरबारों में ले जाया गया। मौला जब आपको दरबार में लेके गए थे, आपके साथ बीवियां तो नहीं थी ना, आपके नामूस तो नहीं थी ना, मैं कुर्बान जाऊं करबला के अली पर। जब दरबार यजीद पे ले जाने के लिए बाजार शाम में लेके गए, इमाम की हालत ये थी, सर झुका हुआ था और तड़प के कहते थे, लैतनी लम तलिदनी उम्मी वलम अबू उकाद जलीलन फिदमिश्क कअन्नी अब्दुन मिन ज़ंदिन गाब अन नसीर। मुझे दमिश्क के बाजार में गले में तौक डाल के ऐसे खींच रहे थे जैसे किसी गुलाम को खींचा जाता है, अरे काश मेरी मां ने मुझे न जला होता और मैंने ये मंजर न देखे होते। अजर कुमार अल्लाह मेरे हुसैन ए मेरी आका दादी, फिर वो जुर्म जो आपके घर में हुआ रुका नहीं, वो करबला में वो बाजारों में और दरबारों में होता रहा। दोस्तों मुख्तार करता हूँ, एक वक्त वो आया जब दरबार वलीद से हुसैन को पैगाम मिला कि हुसैन दरबार में बुलाया गया है। आपको इमाम अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपने घर तशरीफ लाए, अपनी बहन को बतलाया, मारूफ ये है कि जब दरबार वलीद में जाने लगे जनाब सानी जहरा ने कहा, मैं अकेले न जाने दूंगी भैया, अकेले न जाने दूंगी। बनी हाशिम के जवानों को बुलाया, अब्बास अली अकबर आओ ना मोहम्मद आओ मुस्लिम जाफर अब्दुल्ला आओ आओ हुसैन के साथ जाओ, हुसैन को दरबार में ले जाया जा रहा है और हमारे दरबार के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं है हमारे पास। हमारा बाबा भी दरबार में गया था, हमारी माँ भी दरबार में गई थी। इमाम चले, मैं आज वहां भी अर्ज कर रहा था, मैं कभी कभी चश्मे तसव्वुर में देखता हूँ ना, एक मरतबा अपने साथियों से कहा, यही ठहर जाओ यही रुक जाओ, मुझे तनहा बुलाया गया है, अगर मेरी आवाज अंदर से बुलंद हो तो आ जाना, अगर ना बाहर रहना। मेरे इमाम दरबार में गए, इमाम से बैत का तकाजा किया गया, इमाम ने इनकार एक बैत किया। एक मरतबा मरवान ने वलीद से कहा, वलीद अभी वक्त है हुसैन का सर काट ले, अगर हुसैन यहां से चले गए तेरे हाथ ना आएंगे। सर काटने का नाम सुनना था के बेटे को जला लाया और कहा, यब्न ज़लका चश्मे भी नबूज़न के बेटे, क्या तू मुझे कत्ल करेगा? यही इमाम की आवाज का बुलंद होना था। अरे हुसैन के शेरों ने दरवाजे को खोला, दौड़ते हुए हुसैन के करीब आगे पहुंचे, अब्बास आगे आगे है, किसने जिसारत की है, عزیزو ایک مرتبہ حسین انہیں یہ کہہ کے بھی جنگ نہیں لڑنا لے کے باہر نکلے گھر پہنچے اور پھر مزار حرم رسول میں چلے گئے اپنی ماں کی قبر پہ گئے اللہ کے نبی کو الوداع کیا کہا اللہ کے نبی امت کی شکایت کرتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا حسین تو نے کربلا جانا ہے تیری مقتل کربلا ہے ایک مرتبہ اپنی ماں حانیہ حضرت زہرا کے حرم میں آئے ان کی قبر پر آئے اور کہا السلام علیکم یا اماں ماں زہرا میرا سلام حسین کا کہتے جواب آیا قبر سے علیک السلام یا غریب علم یا شہید علم یا مظلوم علم اور میرے مظلوم بیٹے تجھ پر میرا سلام میرے شہید اور غریب الوطن بیٹے تجھ پر میرا سلام الوداع کر کے گھر آگے ایک مرتبہ تیاری ہونے لگی راوی کہتا ہے جب میں مدینے پہنچا مدینے کو سنسان پایا ویران پایا پریشان پایا میں نے اہل مدینہ سے پوچھا کیا ہوا مدینہ میں لوگوں نے بتلایا آج جانے مدینہ نواسا رسول حسین مدینہ چھوڑنے لگا ہے ہر کوئی غمگین ہے کہتا میں آگے بڑھا میں نے کیا دیکھا حسین کرسی پر تشریف فرما ہے محمل بنے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ سوار ہو رہے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک خاتون نمودار ہوئی ایک جوان بچہ آگے بڑھا اس نے خاتون کو سوار کیا میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے بتایا گیا قاسم کی ماں حسن کی بیوہ ہے ایک مرتبہ اسے سوار کرنے کے بعد ایک اور بی بی تھی ایک چاند سا جوان آگے بڑھا میں نے پوچھا یہ کون ہے
یہ کسی
دعائے بھی خدا ہے تجھے جناب رباب کے اجڑی یا گوشت کا واسطہ اس شہید کا واسطہ جس کی لاش کو دھوپ میں دے کر بی بی ساری زندگی دھوپ میں بیٹھا مالک نے شفا کا مراد خدا ہے نے مجلس کے جاتے شفا کو کر لیا یہ بیمار ہے شفا کا اولاد جو بھی اولاد ہے کہ اولاد نہیں نہ تھا رب کے محمد وہ اگے محمد پاکستان کی حفاظت فرما اسے داخلی اور خارجی سازش سے محفوظ فرما خدا ہمارے وطن کے دشمنوں کو سے محفوظ فرما اہل وطن کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما رب کے محمد وہ اگے محمد اہل بیت کے راستے میں چلتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرما ہمارے ایمان کی روح میں تبدیل فرما ہمیں ان کے عوام امسال میں سے قرار دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم